नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीष शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता।
दोस्तों आज हम ले आए हैं आपके लिए 16 से 28 फरवरी का अंक। दोस्तों बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का आधार स्तंभ तैयार किया है। अब वर्ष 2026-27 का बजट भी विकसित भारत के विराट और निर्णायक संकल्प को साकार करने की निरंतरता का प्रतीक बन गया है। संकल्प से सिद्धि के मंत्र और अमृत यात्रा की ओर बढ़ते निर्णायक कदम के साथ ये आम बजट भी विकास, विश्वास और भविष्य की त्रिवेणी को साकार करने वाला आत्मनिर्भर भारत का सशक्त बजट बन गया है। बजट में सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप किसानों की आय को बढ़ाने, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर ध्यान देने, पूर्वोदय और उत्तर पूर्व क्षेत्र को समृद्ध करना तीसरा कर्तव्य बताया गया है।
बजट 2026-27 ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। ये विकसित भारत के संकल्प की अमृत यात्रा का दिशा निर्देशक बजट है। बीते 11 वर्षों में विकास की यात्रा से स्वर्णिम भारत के आधार को सशक्त करने वाला बजट है। बजट में गांव, गरीब किसान का कल्याण, मातृशक्ति का दर्शन तो युवा भारत की युवा सोच भी है, युवाओं के संकल्प सपने और युवाओं की गति भी है। सही अर्थों में ये बजट भी भारतीय अर्थव्यवस्था के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का एक उत्कृष्ट सारांश है। विकसित भारत के लिए शुरू हुई अमृत यात्रा को यथार्थ में बदलने वाला बजट है। ये बजट सटीक, सक्षम, सामर्थ्यवान भारत का बजट है। बीते 11 वर्षों की निरंतरता और दूरदृष्टि वाले आम बजट का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक कदम का लाभ देश के नागरिकों को मिले और राष्ट्र सशक्त हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, भारत का ये जो नया मिजाज है वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी तो फोकस सिर्फ आउटले पर होता था, कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। और उस दिन टीवी देखेंगे तो पूरी टीवी एक ही, यानी इनके लिए बजट मतलब इनकम टैक्स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता तो क्या था, कितनी ट्रेनें घोषित हुई, यही चलता रहता था। उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ कोई पूछने वाला नहीं था। और इसलिए हमने बजट को आउटले के साथ साथ आउटकम सेंट्रिक बनाया। साथियों, बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले ऑफ बजट बोरोइंग पर बहुत अधिक चर्चा होती थी, लेकिन अब ऑफ बजट रिफॉर्म्स की चर्चा होती है। बजट से बाहर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया। साथियों, बजट में घोषित हो या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है।
दोस्तों, पत्रिका में 11 क्षेत्रों के माध्यम से समझाया गया है कि अपने कार्यकाल के 12वें वर्ष में आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने आम बजट से किस तरह नए भारत की दिशा निर्धारित की है। इसमें पहला क्षेत्र है एमएसएमई उद्यम से रोजगार तक। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को इस वर्ष के बजट में नई ऊर्जा देने का प्रयास किया गया है। रोजगार सृजन, इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने वाले इस क्षेत्र को सरकारी समर्थन मिलने से लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत मिलेगी। दूसरा क्षेत्र है आर्थिक सुधार। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आर्थिक, व्यापारिक और जीवन जीने की सुगमता के साथ सुधार एक्सप्रेस पर तेजी से दौड़ रही है। बीते 11 वर्ष में सरकार ने कार्रवाई, सुधार और जनहित को प्राथमिकता दी है। अब वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट में इसे और गति दी गई है। आज भारत का बैंकिंग क्षेत्र पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बेहतर वित्तीय स्थिति, ऐतिहासिक मुनाफा, कर्ज गुणवत्ता में सुधार और 98% से ज्यादा गांवों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच है। इस क्षेत्र की प्रगति को और आगे बढ़ाने और भारत की अगली विकास जरूरतों के अनुसार इस क्षेत्र की समग्र समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
आयकर के स्लैब या छूट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। सरलीकृत आयकर नियमावली और फॉर्म जल्दी दिए जाएंगे अधिसूचित। नए फॉर्म आम नागरिक के आसान अनुपालन के हिसाब से पुनः डिजाइन किए गए हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने जो ब्याज तय किए उस पर आम व्यक्ति को आयकर नहीं देना होगा। इस पर कोई TDS भी नहीं काटा जाएगा। छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना जिसमें नियमों पर आधारित स्वचालित प्रक्रिया के जरिए कर निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन किए बिना कम या शून्य कटौती का प्रमाण पत्र मिल सकेगा। एक मामूली शुल्क देकर रिटर्न में संशोधन करने की समय सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। कर रिटर्न दाखिल करने की अलग अलग समय सीमा रहेगी। ITR 1 और ITR 2 भरने वाले पहले की तरह 31 जुलाई तक रिटर्न होगा, जबकि गैर लेखा परीक्षा वाले व्यापार मामलों और न्यासों को 31 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी आम बजट 2026-27 देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है। निरंतरता के साथ आगे बढ़ना, ये बजट आत्मनिर्भर है और विकसित भारत के उस संकल्प को मजबूती देता है जो केवल नारा नहीं बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस प्रयास है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है।
श्रोताओ, ये तो बात रही हमारी आवरण कथा की। अब बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की, जिनमें व्यक्तित्व की कड़ी में लड़का विद्रोह के महानायक बुधू भगत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण, पद्म सम्मान 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह पर विशेष सामग्री समाहित है। लड़का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तथा स्वाधीनता के स्वप्नदृष्टा वीर बुधू भगत ने अंग्रेजों और साहूकारों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और गुरिल्ला युद्ध करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने चौरैया, पिठौरिया, लोहरदगा और पलामू क्षेत्र में भी लोगों को ब्रिटिश शासन से आजाद होने के लिए जागरूक किया, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। कई सालों तक अंग्रेजों को जंगलों से वो खदेड़ते रहे और आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। साहस और प्रतिरोध के प्रतीक बुधू भगत की वीरता और बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। व्यक्तित्व की कड़ी में इस अंक में लड़का विद्रोह के महानायक बुधू भगत के जीवन की प्रेरणादायी कहानी शामिल है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये लाखों निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। भारत के पेंशन आधारित समाज के परिवर्तन का समर्थन करता है। सतत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है। साथ ही सिडबी को 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे कई एमएसएमई को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पत्रिका में शामिल हैं।
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म सम्मान अब सिर्फ प्रसिद्ध हस्तियों को नहीं बल्कि किसी भी सूरत में समाज देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार और मानवता की सेवा करने वाले गुमनाम नायकों को भी मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान सरकार ने इन पुरस्कारों के चयन की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी है। अब राष्ट्रपति भवन में सुर्खियों से दूर निस्वार्थ रूप से परंपरा, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और स्वास्थ्य के लिए सेवा करने वाले गुमनाम नायक जनता के पद्म का सम्मान बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2026 में सार्वजनिक जीवन को समृद्ध करने वाली 131 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी है उनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इनमें से 19 महिलाएं हैं, जबकि विदेशी NRI, POI, OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार हैं। इस वर्ष के नामों में शामिल 19 महिलाओं को जोड़ लें तो बीते 6 वर्ष में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 154 हो गई है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल के आसपास प्रदान किए जाते हैं।
देश के लिए बेहतरीन योगदान और उनकी समर्पित सेवा के लिए महान विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पद्म भूषण पाने वालों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कल्लीपट्टी रामासामी पलनीसामी, गायिका अलका याग्निक और मलयाली अभिनेता ममूटी के साथ ही एड गुरु पीयूष पांडे, राजनेता शिबू सोरेन और विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वालों में जो 113 लोग शामिल हैं, उनमें खेल जगत से क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, बलदेव सिंह, के पजनीवाल और सविता पुनिया शामिल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम से पद्म सम्मान के लिए नामित लोगों के योगदान को न सिर्फ सराहा बल्कि कहा है कि इनके उत्कृष्ट योगदान प्रेरणा पथ पर दूसरों के मार्ग प्रशस्त रहेंगे। समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महानुभावों ने अनवरत योगदान देकर अन्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। ये सम्मान भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में इनकी निरंतर भूमिका को दर्शाते हैं, जो पीपुल्स पद्मा की वास्तविक भावना के अनुरूप है।
पद्म सम्मान के लिए चयनित लोगों ने ये साबित किया है कि सामाजिक दायित्वों का सजगता से निर्वहन करते हुए राष्ट्र निर्माण में प्रभावी सहयोग दिया जा सकता है। ये निश्चित रूप से अधिक लोगों को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता, समर्पण और सेवा हमारी समाज की संरचना को समृद्ध बनाती है। ये सम्मान उस वचनबद्धता और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाता है जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहती है।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।